नमस्कार भारत, तारीख 25 मार्च दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका, प्रतिनिधि सभा में वोटिंग के पहले वापस लिया हेल्थ केयर बिल।
I'm disappointed because we could have had it. I'm a little surprised, to be honest with you. We really had it. It was pretty much.
आधार कार्ड के बढ़ते दायरे पर सवाल उठा रहे अर्थशास्त्रियों की क्या है चिंता?
सरकार चाह रही है कि वो पूरी जनता पे कंट्रोल रखे, आपका आधार नंबर हर एक डेटाबेस में वो डालने की कोशिश कर रही है।
विवेचना में सुनिए 1970 के दशक में सत्ता के शिखर से कैसे फिसली जनता पार्टी।
मुरारजी देसाई अमेरिका गए थे, उन्हीं दिनों में राजनारायण ने शिमला में एक सभा की, वहाँ से राजनारायण और जनसंघ खेमे की टकराहट शुरू हुई।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिनिधि सभा में हेल्थ केयर बिल को पास नहीं करवा सके। ट्रंप ओबामा केयर की जगह नया हेल्थ केयर बिल पारित कराना चाहते थे, जो उनके मुख्य चुनावी मुद्दों में से एक था। पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाने की वजह से मतदान के ठीक पहले बिल को वापस ले लिया गया। संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व के दूत ने इसराइल पर आरोप लगाया है कि वो कब्जे वाले पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलम में निर्माण कार्य की गतिविधियों को रोकने की सुरक्षा परिषद की मांग की अनदेखी कर रहा है। परिषद के सदस्यों ने दिसंबर में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इजरायली बस्तियों को बसाने की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और शांति में बाधा बताया था। मध्य पूर्व के दूत निकोलाय म्लेटोनोव ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों में यहां तेजी से निर्माण कार्य का विस्तार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को इजरायल पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने ऊर्जा कंपनी ट्रांस कनाडा को विवादास्पद कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा रोक दिए गए इस प्रोजेक्ट को अमरीकी राष्ट्र के हित में पाया गया है। ओबामा ने जलवायु परिवर्तन का हवाला देकर इस पर रोक लगाई थी। ये पाइपलाइन हर रोज 800,000 बैरल कच्चे तेल को कनाडा से मैक्सिको की खाड़ी के तट की रिफाइनरी में लाएगी। ट्रांस कनाडा के अध्यक्ष रस गिरलिंग ने ट्रंप की मंजूरी का स्वागत करते हुए कहा,
This is a very, very important day for us, for our company. So on behalf of, you know, thousands of people that have
ये हमारे और हमारी कंपनी के लिए बेहद खास दिन है। मैं उन हजारों लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने में कड़ी मेहनत की, यहाँ तक पहुँचने में लंबा वक्त लगा है। हम बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इराक के मूसल से नागरिकों की मौतों की आ रही खबरें बेहद चिंता की बात है। मूसल को आईएस के कब्जे से वापस लेने के लिए इराकी सरकार हमले की कार्रवाई कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वो वहां होने वाली मौतों से हैरान हैं। गुरुवार को इराक से आई अपुष्ट खबरों के मुताबिक हाल में इराकी सेना के साथ अमरीकी गठबंधन वाले हवाई हमलों में कम से कम 200 लोग मारे गए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रांसवा फियो पर गरिमा और सम्मान की सीमाओं को पार करने का आरोप लगाया है। फियो ने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि उनको बदनाम करने के अभियान के पीछे राष्ट्रपति का हाथ है। राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि उन्होंने कभी किसी कानूनी कार्रवाई में दखल नहीं दिया। इसमें वो फियो की उस जांच को भी शामिल कर रहे थे जिसमें कथित तौर पर उन पर अपनी पत्नी और बच्चों के फालतू कामों के लिए जनता के पैसे के इस्तेमाल के लिए की गई थी। फ्रांसवा ओलांद ने कहा,
je ne veux pas rentrer dans le débat électoral, je ne suis pas candidat. Mais il y a
मैं चुनावी बहस में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन एक तय गरिमा है, एक जिम्मेदारी का भाव है जिसका सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि फियो इसके पार चले गए। ये थे फ्रांसवा ओलांद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बुधवार को ब्रिटेन के मध्य लंदन में हुए चरमपंथी हमले के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 11 में से 6 लोगों को रिहा कर दिया। इन सभी को हमले की अगली सुबह बर्मिंघम पैलेस में हिरासत में लिया गया था। पुलिस का कहना है इनमें से किसी पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। शनिवार की खुशनुमा सुबह है। दिल्ली में तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस है और भारतीय समय के मुताबिक वक्त है 6:34:46। क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले हमारे तमाम वो श्रोता जो आज छुट्टी मना रहे हैं, उन्हें इंतजार होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से धर्मशाला में शुरू हो रहे चौथे टेस्ट मैच का। हम मैच पर बात करेंगे, आधार कार्ड को लेकर आपके लिए क्या बातें जानना जरूरी है ये भी बताएंगे, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की स्वास्थ्य योजना ओबामा केयर की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने ओबामा केयर को खारिज करने का वादा किया था, लेकिन इस कोशिश की पहली सीढ़ी पर ही ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा में वोटिंग के पहले ही उन्हें अपना बिल वापस लेना पड़ा है। रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत होने के बाद भी ट्रंप संशोधन के पक्ष में जरूरी 216 वोटों की व्यवस्था नहीं कर सके। डेमोक्रेटिक पार्टी तो उनके प्रस्तावित सुधारों के खिलाफ थी ही, उनकी अपनी पार्टी में भी नए बिल को लेकर काफी विरोध था। पूरा ब्यौरा सुनिए तृप्ति श्रीवास्तव से।
ओबामा केयर की जगह नया हेल्थ केयर बिल पारित कराने की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाने की वजह से मतदान के ठीक पहले बिल को वापस ले लिया गया। ट्रंप ने कहा कि वो इसे लेकर निराश हैं। मैं निराश हूँ क्योंकि हम इसे पास नहीं करा पाए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं थोड़ा हैरान भी हूं। सब कुछ हाथ में था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे एक बेहतर बिल सामने आएगा, क्योंकि इस बिल में कुछ चीजें थीं जो मुझे खास पसंद नहीं थीं। दोनों पक्ष साथ में आकर एक अस्थी हेल्थ केयर पर काम करेंगे, यही सबसे अच्छा होगा। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ट्रंप अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के पुराने कानून ओबामा केयर को बदलकर नया हेल्थ केयर कानून बनाना चाहते हैं। ओबामा केयर को रद्द कर उसकी जगह नया बिल लाना ट्रंप के चुनाव अभियान के मुख्य मुद्दों में से एक था। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं को कथित तौर पर आगाह किया था कि अगर वो बिल के पक्ष में वोट नहीं डालते तो ओबामा केयर कार्यक्रम के साथ फंस जाएंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 28 से 35 रिपब्लिकन नेताओं ने बिल का विरोध किया था। कुछ रिपब्लिकन नेता इसलिए नाखुश थे कि बिल में कटौती बहुत ज्यादा की गई है, जबकि कुछ को लगा कि ये बदलाव काफी नहीं है। स्पीकर पॉल रियान ने कहा कि हम समर्थन के बेहद करीब पहुंच चुके थे।
We've did everything we could to get consensus. This is how governing works when you're in the majority.
हमने सबकी सहमति पाने के लिए सब कुछ किया। जब आप बहुमत में होते हैं तो सरकार इसी तरह काम करती है। हमें कानून बनाने के लिए 216 लोगों की जरूरत थी, ना 210 और ना ही 215। हमें 216 लोगों की ही जरूरत थी। हमें 216 लोगों का वोट नहीं मिल पाया। हम बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी 216 नहीं थे। ये थे स्पीकर पॉल रियान के शब्द। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता नैन्सी पेलोसी ने इसे अमरीकी लोगों की जीत बताया है। हेल्थ केयर कानून बिल पास ना करवा पाने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो भविष्य में एक बेहतर हेल्थ केयर कानून लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल वो कर सुधारों पर ध्यान देंगे।
डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगाए, लेकिन वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब बात उस खबर की जिससे कहीं ना कहीं आपके हित जुड़े हैं। भारत में आधार कार्ड की अहमियत लगातार बढ़ रही है। सरकारी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। सरकार के हालिया निर्देश के मुताबिक मोबाइल कनेक्शन और आयकर भरने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर कई बार आदेश दिए हैं और कहा है कि इसे हर सेवा के लिए अनिवार्य नहीं किया जाए, लेकिन आधार का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या आधार के बढ़ते दायरे को लेकर चिंता की जानी चाहिए? बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने अर्थशास्त्री कृतिका खेड़ा के सामने यही सवाल रखा।
देखिए, जो लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हैं, जो एक आरटीआई किया गया था सूचना के अधिकार के तहत, तो उसमें पाया गया कि 99.9% लोगों ने अपना आधार कार्ड मौजूदा आइडेंटिटी प्रूफ के बेसिस पर पाया है।
मतलब यानी उनके पास पहले से ही पासपोर्ट या हाँ, राशन कार्ड या कोई
आधार बनवाने के लिए आपको प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस लेके जाना है और 99% ऐसे लोग थे जिन्होंने वो दोनों देकर अपना नया आधार कार्ड बनवाया।
और कोशिश यही करेंगे कि सरल शब्दों में हम ये समझ पाएं कि आधार के क्या फायदे हैं और आधार कार्ड बनवाने से कई लोग क्यों घबरा रहे हैं।
आज से पहले की क्या स्थिति थी कि अगर मेरा राशन कार्ड था तो मुझे राशन मिल रहा था, मेरी पेंशन अगर हो गई थी तो मुझे बैंक में पेंशन मिल रही थी। आज सरकार ने ये कह दिया है कि जब तक आप अपना आधार कार्ड इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको पेंशन या राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं क्योंकि सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य बना रही है।
लेकिन कई लोगों का कहना है कि अगर एक नया आईडी प्रूफ बन भी जाए और उसको एक एडिशनल एक तरह से सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किया जाए, कोई लोग गलत इस्तेमाल ना करें सरकारी सुविधाओं का, तो इसमें क्या परेशानी है?
देखिए, इसका चोरी रोकने में बहुत कम रोल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो चोरी रोकने के और तरीके हैं जो बहुत सारे राज्यों ने अपनाए हैं आप उनको अपनाइए, जिसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है। लेकिन ये आधार टेक्नोलॉजी जहां जहां भी गई है वहां वहां ये सारे प्रोग्राम बिल्कुल बैठ गए हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत खराब है, कभी फोन नहीं चलता, कभी सर्वर नहीं चलता, कभी इंटरनेट नहीं चलता।
जैसे सरकार ने अभी वेलफेयर स्कीम्स में इसको जोड़ दिया है, तो कई लोगों का कहना है कि इससे वेलफेयर स्कीम्स में जो बीच में से पैसे की चोरी होती थी वो रुक जाएगी, गलत लोग अपनी आइडेंटिटी दिखा के उसका फायदा नहीं उठाएंगे, जो सही लोग हैं जिनका हक बनता है राशन लेना या कोई भी और सुविधा का इस्तेमाल करना उन्हीं लोगों को मिलेगा।
सरकार का कहना है कि एलपीजी में हमने 2015 में 14,000 करोड़ इसके वजह से बचाए हैं, लेकिन उसी साल नवंबर 2015 का पीएमओ के मिनट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ एलपीजी सब्सिडी बची है, लेकिन उस पूरी बचत में आधार से केवल 90 करोड़ बचे हैं, बाकी जो सब बचत हुई है वो इंटरनेशनल प्राइसेस की गिरावट की वजह से हुई है।
क्या मोटिवेशन है कि सरकार ये प्रचार कर रही है जो अपने आप में अच्छा प्रचार होना चाहिए अगर अच्छी स्कीम है तो, पर आप कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से इसको कारगर बताने के लिए किया जा रहा है?
कड़वी होली को इन्होंने शुगर कोटिंग कर दिया है। शुगर कोटिंग ये था कि इसमें आप शामिल हो जाएंगे सरकारी बेनिफिट्स में या बचत होगी, लेकिन कड़वी गोली ये है कि पीछे से सरकार चाह रही है कि वो पूरी जनता पे कंट्रोल रखे, आपका आधार नंबर हर एक डेटाबेस में वो डालने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे वो देख सके कि रितिका का मोबाइल नंबर कहाँ कहाँ जा रहा है, उसने कहाँ की रेलवे टिकट बुक कराई है, कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है। तो वो मेरे पे देख रेख करने का एक तरीका है और हमें कंट्रोल करने का तरीका है।
ये थी अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा और उनसे बात कर रही थी दिव्या आर्य। अब वक्त है समाचार पत्रों की समीक्षा का। स्टूडियो में मौजूद है तृप्ति श्रीवास्तव। दिल्ली से छपे अखबारों की क्या सुर्खियां हैं तृप्ति आज?
वात्सल्य, एक तो आज टेस्ट मैच शुरू होने वाला है धर्मशाला में, तो मैं एक बहुत ही प्यारी सी खबर से शुरुआत करूंगी जो दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे छापी है कि आखिरी टेस्ट से पहले दलाई लामा से स्मिथ मिले थे और उन्होंने दलाई लामा से शांत रहने के तरीके सीखे। अखबार में ये लिखा है कि उन्होंने कि वो कप्तान जब स्मिथ शुक्रवार को टीम के साथ तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने मैक्लोडगंज पहुँचे तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि अब मैं तनाव भरे मैच के कारण मुझे चैन की नींद आती तो कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने
शांति के साथ एक शिवसेना सांसद से जुड़ी अशांति की खबर भी देख रहा हूं।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो खबर है वो ये है कि कल जो है शिवसेना सांसद जो थे रविंद्र गायकवाड़ जो है उनको हर न्यूज़पेपर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है और एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ बदसलूकी के मामले पर जो है उनकी काफ़ी वो सुर्खियों में रहे थे और सभी अखबारों में लगभग ये खबर है कि गायकवाड़ ने एयर इंडिया के एक 60 साल के कर्मचारी की सैंडल से पिटाई की और माफ़ी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया और उन्हें जगह जगह फिर उसके बाद ट्रेन से लौटना पड़ा। नवभारत टाइम्स ने भगोड़ों की घेराबंदी की खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण में ब्रिटेन से सहयोग मिलेगा और दाऊद पर नकेल के लिए ईडी ने तैयारी कर ली, यानी भारत सरकार की तरफ से तैयारी हो गई है।
जी तृप्ति, और मैं भी ये बता दूं कि पाकिस्तान के एक टीवी चैनल ने अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए नया तरीका तलाशा है। ये चैनल पूर्व राष्ट्रपतियों को विश्लेषक और अभिनेताओं को होस्ट की तरह पेश कर रहा है। अगर हमारे श्रोता है इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो उन्हें रुक करना होगा bbchindi.com का।
बीबीसी इंडिया बोल। उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई, मांस के व्यापार पर निर्भर लाखों मुसलमानों, दलितों और दूसरे समुदायों का क्या होगा? मुख्यमंत्री बनते ही आदित्यनाथ योगी के इन फैसलों पर क्या है आपकी राय? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 25 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त है उस खास पेशकश का जिसका आपको रहता है पूरे हफ्ते इंतजार यानी विवेचना। साल 1977 के चुनाव में भारी विजय दर्ज करने के बाद 24 मार्च 1977 को भारत में पहले गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। जनता पार्टी की उस सरकार में कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह महत्वाकांक्षाओं के टकराव की वजह से मात्र 27 महीनों में उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फसल।
जब जयप्रकाश नारायण नवनिर्वाचित जनता पार्टी सदस्यों को राजघाट पर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ दिला रहे थे, प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ का खेल शुरू हो चुका था। नेतृत्व की दौड़ में थे मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। ऐसा लगता था कि बहुमत जगजीवन राम की तरफ था, लेकिन जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी ने 82 वर्षीय मोरारजी देसाई के नाम पर मुहर लगाई। इस समय इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख और जाने माने पत्रकार राम बहादुर राय उस घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहे थे।
चुनाव परिणाम के बाद बहुत ही कसमकस थी कि किसको नेता बनाएं। जनसंघ घटक ने जगजीवन राम को समर्थन देने का फैसला अपने यहाँ किया था। इन आपस में ये सहमति बनी थी कि जगजीवन राम को अगर हम नेता बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो पार्टी को 5 साल तक चलाया जा सकता है। लेकिन जगजीवन राम के साथ एक कमजोर पक्ष था। जगजीवन राम वही हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पार्लियामेंट में समर्थन किया, लिहाजा जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया वो हमारा नेता कैसे हो सकता है। दूसरा, चौधरी चरण सिंह भी जगजीवन राम को स्वीकार करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। चौधरी चरण सिंह को दूसरे कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सबने जब देखा कि कोई बात हल नहीं हो रही है तो जेपी को और जेबी कृपलानी को ये आग्रह किया गया कि आप लोगों से विचार विमर्श करके जो नाम घोषित कर देंगे वह हमको स्वीकार होगा। पर्दे के पीछे गतिविधियां तेज हुई और जनसंघ घटक ने भी आखिरकार जेपी की सलाह पर अंततः ये जेपी और जेबी कृपलानी ने तय किया कि मोरारजी देसाई सबसे अच्छे रहेंगे।
मोरारजी देसाई आखिरकार उस पद पर पहुंच गए थे जिस पर वो पहले 2 बार पहुंचते पहुंचते रह गए थे। जाने माने पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब ऑल द जनता मैन में लिखा था,
सेंट्रल हॉल के मंच पर ही आचार्य कृपलानी ने मोरारजी देसाई से फुसफुसाकर कहा था, आपको बाबूजी से मिलने जाना चाहिए। देसाई ने तमक कर जवाब दिया, मैं क्यों उनसे मिलने जाऊं। उधर जगजीवन राम के घर पर दूसरा ही नजारा था। उनके समर्थक गुस्से में जनता पार्टी के झंडे कुचल रहे थे। जगजीवन राम इतने गुस्से में थे कि वो हर कमरे में फर्नीचर को लात मारते हुए चिल्ला रहे थे, धोखा धोखा। जनता पार्टी के एक नेता ने उन्हें मनाने के लिए कहा, जेपी ने कहलवाया है आप जिस मंत्रालय का नाम लेंगे वो आपको मिल जाएगा। जगजीवन राम चिल्लाकर बोले थे, मुझे देने वाले जयप्रकाश नारायण कौन होते हैं। 4 दिन के नाटक के बाद जगजीवन राम मोरारजी देसाई से कोई भी पद लेने के लिए तैयार हो गए। उनको सिर्फ अपना मुंह छिपाने के लिए एक बहाना चाहिए था और वो उन्हें जेपी ने दिया। जेपी ने उन्हें फोन कर कहा, आपके सहयोग के बिना नए भारत का निर्माण संभव नहीं हो सकेगा।
इसी तरह नए भारत के निर्माण में जगजीवन राम की भागीदारी सुनिश्चित करवाई गई। लेकिन चरण सिंह को कौन मनाता, जो शुरू से ही जनता पार्टी के सबसे बड़े घटक लोकदल का नेता होने के नाते प्रधानमंत्री बनने की मंशा पाले हुए थे। इमरजेंसी के दौरान जेल गए वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर बताते हैं,
मुझे अभी तक ध्यान है कि जब वो जनता पार्टी तोड़ के प्रधानमंत्री बन गए बिना पार्लियामेंट फेस किए हुए, इंडियन एक्सप्रेस में एक बॉक्स आइटम भी छपा था जो उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ एम्बिशन पूरा हो गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि चरण सिंह इतने डेस्परेट थे कि प्रधानमंत्री बने कि उनके होम मिनिस्टर बनने के 2 दिन बाद जब मैं उनसे मिला तो रिस्क उस रोड में रहते थे और बैडमिंटन के कोर्ट में अपना बनियान और अंगोछा पहन के बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे, देखो कपूर किसको प्रधानमंत्री बनाया है, ये तो BCR से जीत कर आया है और यहाँ पूरे यहाँ से लेके अमृतसर से लेके वहां तक सब 2-2 लाख से जीते।
कागज पर तो ये बहुत अच्छा कैबिनेट था, जिसमें एक ओर अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और एचएम पटेल जैसे लोग थे, तो दूसरी ओर मधु दंडवते, लाल कृष्ण आडवाणी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे लोग भी। लेकिन दिग्गज जैसे चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम स्वामी और मधुलिमय जैसे लोग इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए थे। बाद में इसका खामियाजा जनता पार्टी को भुगतना पड़ा।
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब हार्वर्ड से यहाँ आए थे और IIT में प्रोफेसर होकर के, तो वो जनसंघ से जुड़े और नानाजी देशमुख के वो करीब थे। इमरजेंसी के खिलाफ जो लोकतंत्र की लड़ाई थी उसके वो नायक थे। उनको ये लगता था कि मुझे विदेश मंत्री होना चाहिए था। मुरारजी देसाई ने डॉक्टर स्वामी की इस आकांक्षा को उनकी कमजोरी में बदल दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मुझे बहुत बाद में मुझे कहा, मुझे अफसोस है कि मुरारजी देसाई ने मेरा उपयोग किया। तो जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का उपयोग मुरारजी देसाई अटल बिहारी वाजपेयी की कमजोरियों को उजागर करने के लिए कर रहे थे, उसी तरह से मधुलिमय चौधरी चरण सिंह की कमजोरियों का इस्तेमाल करके सरकार को डी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। मधुलिमय भी सरकार से बाहर थे। अगर आप अच्युत पटवर्धन और नानाजी गोरे दोनों ने उस जनता पार्टी के झगड़े के बारे में जब लिखा है उसको अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उसमें दोनों इस राय के हैं कि मधुलिमय पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन अहंकार उनका बहुत ऊंचे दर्जे का था। उनके अंदर आत्मविश्वास ये था कि अगर मैं मंत्री होता तो इन समूह से बेहतर कर।
जनता पार्टी को रसातल तक ले जाने में एक और शख्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो थे इंदिरा गांधी को रायबरेली से हराने वाले राजनारायण। बिना नागा मालिश कराने वाले राजनारायण हमेशा गलत वजहों से समाचारों में रहते थे। कुछ दिनों बाद मुरारजी देसाई ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी सरकार गिरवा कर देना पड़ा।
राजनारायण जी विध्वंस के नेता थे और सारी जिंदगी उन्होंने समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रहनुमाई में उन्होंने किया। वो विरोध के आंदोलनों से उपजे हुए नेता थे। जब सत्ता का उनको अवसर मिला तो उन्होंने विरोध के जो जो मुद्दे थे उसको ही सरकार का भी मुद्दा बनाने की कोशिश की। मुरारजी देसाई अमेरिका गए थे, उन्हीं दिनों में राजनारायण ने शिमला में एक सभा की। सभा की अनुमति शांता कुमार की सरकार ने नहीं दी। वहां से राजनारायण और जनसंघ खेमे की टकराहट शुरू हुई। जब मुरारजी भाई अमेरिका से वापस आए तो राजनारायण जी सबको इत्र लगा रहे थे। वो मुरारजी देसाई को भी इत्र लगाने पहुंचे तो मुरारजी ने कहा कि मेरे गैरहाजिरी में तो तुम गंदगी फैला रहे थे और यहाँ तुम सुगंध फैला रहे हो, ये क्या तरीका है? संभवतः राजनारायण के अहंकार को इससे चोट लगी। मुरारजी देसाई भी अगर व्यवहार कुशल व्यक्ति होते तो राजनारायण को अलग से बुला करके कहते और कुछ समझाते तो शायद उसका ज़्यादा असर होता। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं भारत में महाभारत का कारण बनती।
दूसरी तरफ चरण सिंह की इंदिरा गांधी के प्रति नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो उन्हें किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करवाना चाह रहे थे।
चरण सिंह वार्ड नंबर 14 में थे तिहाड़ में। उनके साथ में प्रकाश सिंह बादल अकाली दल से और जीवन सिंह उमरंगल वो थे, और ये सारा दिन बैठ के टाइम पास करने के लिए कोर्ट पीस खेलते थे। पहली दफा मैं चरण सिंह को मिला जेल में, मुझे अपने कमरे में ले गए और क्या मैं देखता हूँ कि एक किताब पड़ी हुई है, वो मसलनी पे। कहने लगे कि देख ले तू कपूर, इंदिरा गांधी को इसी कोठड़ी में रखूंगा। चरण सिंह की अड़ियलपन से जनता पार्टी के डिस्ट्रक्शन के सीड पैदा हुए। काफी लोग ये नहीं जानते हैं कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी हटी और नई सरकार आ गई, इतनी भयभीत थी, इतनी डरी हुई थी, वो हिंदुस्तान छोड़ना चाहती थी। पर चरण सिंह अड़े हुए थे कि इसका पासपोर्ट मैं इम्पाउंड करूंगा और इसको मैं जेल भेजूंगा। मैं मानता हूं अगर चरण सिंह उनका पासपोर्ट इम्पाउंड ना करते और इंदिरा गांधी को जाने देते तो मेरा ख्याल है इंदिरा गांधी वापस जो जीत कर आई वो मुश्किल हो जाता।
विडंबना ये रही कि जनता पार्टी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश नारायण को जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने हाशिए पर ला दिया। एक बार मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने मोरारजी देसाई से पूछा था कि आप जेपी की सलाह लेने उनसे मिलने क्यों नहीं जाते, तो उनका जवाब था, जेपी गांधी हैं क्या?
जेपी वो समझते थे कि पॉपुलैरिटी में उनसे ज्यादा है और वो खुद चाहते कि मैं पॉपुलर हुए नहीं इतने, इसलिए वो को जेपी को मानते नहीं थे। मैंने बल्कि कहा एक दफा कि मैं अभी पटना में था तो जेपी बहुत नाराज थे, देखो क्या हो रहा है हिंदुस्तान का, देश का। तो मैंने कहा मुरारजी भाई आपको जाना चाहिए पटने, मैं तो कभी गांधी को मिलने नहीं गया था, तो ये क्या है? मैंने कहा नहीं, जेपी की मूवमेंट तो क्या ठीक है, जेपी मूवमेंट वगैरह ये तो हम सब लोगों ने भी तो कुछ किया वगैरह।
सत्ता में आने के मात्र 2 साल 3 महीनों बाद मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद प्रधानमंत्री बने चरण सिंह भी सिर्फ 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री रह पाए। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की दोबारा वापसी हुई और 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी का रामलीला मैदान में कहा गया जुमला गलत साबित हुआ कि जो लोग अपने को भारत का पर्यायवाची कहते थे उन्हें भारत की जनता ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
ये विवेचना आप विस्तार से सुन सकते हैं bbchindi.com पर और अपनी राय हमें जरूर भेजिए।
सुरों की माला जब गुथती है तो बनता है गीत। फिल्मी दुनिया के वो गीत कैसे बने जो अमर हो गए।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
कैसे रची रचनाकारों ने धुने और कैसे हुआ गायकी का कमाल।
वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
संगीत की मिठास से सराबोर धुनों के बुनने और गुनने की कहानी, बीबीसी हिंदी की विशेष श्रृंखला संग संग गुनगुनाओगे।
संग संग तुम गुनगुनाओगे।
संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र से सुनिए 26 मार्च से हर रविवार दिनभर कार्यक्रम में।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। पिछले 3 टेस्ट मैचों से सीरीज मुट्ठी में करने की कवायद में जुटी भारत ऑस्ट्रेलिया की टीमों के पास धर्मशाला टेस्ट आखिरी उम्मीद है। आज दोनों टीमें धर्मशाला में अंतिम टेस्ट के लिए उतरेंगी। पुणे में भारत को 333 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू टीम को पहले मैच में बड़ा झटका दिया। इसका बदला भारत ने ही अगले मैच में बेंगलुरु में चुका लिया। रांची का तीसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। आज से शुरू हो रहे मैच में भारत के ऊपर थोड़ा ज्यादा दबाव है, क्योंकि अगर टेस्ट ड्रॉ रहा तो सीरीज बराबरी पर खत्म होगी, जिसके साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के ही पास रहेगी। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली के खेलने पर संशय बना हुआ है। उनके मैच में नहीं उतरने का भारत को कितना नुकसान हो सकता है, क्रिकेट विशेषज्ञ अयाज मेमन बता रहे हैं।
बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि भले ही बहुत कम रन बने उनके सीरीज में, लेकिन जिससे कोई ये नहीं करेगा कि वो सबसे बड़े बल्लेबाज हैं इंडियन टीम के, और अगर वो नहीं रहते हैं तो बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मैच छोड़ेंगे, वो बहुत ही कमिटेड प्लेयर हैं, इंजॉय करते हैं खेलना, और थोड़ा सा हल्का सा कुछ फिटनेस का इशू होगा तो भी वो खेलेंगे, अगर मेजर इशू होगा तो जरूर बैठ सकते हैं मैच के बाहर।
विराट की कवर के रूप में श्रेयस अय्यर धर्मशाला पहुंच चुके हैं। 21 साल के श्रेयस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में दोहरा शतक लगाया था। उनके अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी टीम से जुड़ चुके हैं। वहीं कुछ दिन पहले आईसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले शशांक मनोहर अपना फैसला वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। आईसीसी बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर उनसे आग्रह किया था कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। शशांक मनोहर ने इसी महीने 15 मार्च को अचानक व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उनके इस कदम ने सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि उन्हें इस पद पर आए सिर्फ 8 महीने हुए थे, जबकि उनका कार्यकाल 2 साल का था। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
सभा की समाप्ति के पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिनिधि सभा में हेल्थ केयर बिल को पास नहीं करवा सके। ट्रंप ओबामा केयर की जगह नया हेल्थ केयर बिल पारित करना चाहते थे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इराक के मूसल से नागरिकों की मौतों की आ रही खबरें बेहद चिंता की बात है। अपुष्ट खबरों के मुताबिक इराकी सेना के साथ अमरीकी गठबंधन वाले हवाई हमलों में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। बुधवार को ब्रिटेन के मध्य लंदन में हुए चरमपंथी हमले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 11 में से 6 लोगों को रिहा कर दिया। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी 7:30 PM इंडिया बोल में। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेश चौहान ने। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।